ஓம் சாந்தி. பாபா நே ஹம் சப் பச்சோ கோ நயி துனியா நயா யுக் லானே கே நிமித் பனாயா ஹை. வைசே தோ ஹம் பாபா கோ ஹி கஹதே ஹை கி பாபா ஹி ஸ்வர்க் கா ரச்சயிதா ஹை. ஐசி ஸ்வர்ணிம் துனியா கா விசேஷ காரிய கரணே நர்க் கோ ஸ்வர்க் பனானே கே லியே பாபா கா ஹி அவதரண ஹோதா ஹை. லேக்கின் உஸ் சத்யுகி துனியா மே ஜோ சல்னே வாலி ஆத்மாயே ஹை உன்ஹே அப்னே சன்ஸ்காரோ மே வோ திவ்யதா பவித்ரதா அலௌகிக்தா தாரண கர்னி படதி ஹை. ஜித்னே ஹம் சப் கே சன்ஸ்கார் பவித்ர ஔர் சுத்த பன்தே ஜாதே ஹை புரானே விகாரி சன்ஸ்கார் பரிவர்த்தன் ஹோதே ஜாதே ஹை உத்னி நயி துனியா ஹமாரே சமீப் திகாயி தேதி ஹை கி அப் ஹமாரி ஸ்வர்ணிம் துனியா ஆயி கி ஆயி. ஹமாரே ஜோ பி காரியக்ரம் சல்தே ஹை ஜஹா பர் பி ஹம் யோக தபஸ்யா கே விசேஷ காரியக்ரம் ரக்தே ஹை உன் சப் கா பி யஹி மூல் லக்ஷ்ய ரஹதா ஹை கி ஐஸே சன்ஸ்கார் ஜோ இஸ் தேஹபான் மே ஆனே சே நெகேட்டிவ் பன் கே உன் சன்ஸ்காரோ மே பரிவர்த்தன் ஆயே உன்மே திவ்யதா ஆயே சன்ஸ்கார் ஹமாரே பஹுத் சுத்த நிர்மல் பனே ஔர் ஜித்னே சன்ஸ்கார் சுத்த பன்தே ஜாதே ஸ்வயம் கே பரிவர்த்தன் சே ஹம் கஹ சக்தே ஹை கி அப் ஹமாரி நயி துனியா ஆனே வாலி ஹை. தோ நயி துனியா கி ஸ்தாபனா கர்னே வாலே நிமித் பிராமண ஆத்மாயே ஜின்ஹே விசேஷ அட்டென்ஷன் தேனா ஹை கி மேரே ஜோ பி ஐசே வியர்த் சாதாரண் கலத் சன்ஸ்கார் பன் கே கைசே பனே ஹை உஸ்கா தோ பஹுத் படா விஸ்தார் ஹை. க்யோங்கி சத்யுக் ஔர் த்ரேதா கே அந்தர் தோ ஆத்ம அபிமானி ஸ்டேஜ் ஹோனே கே காரண் சங்கம் யுக் கி பிராலப்த ஹோனே கே காரண் வஹா பர் கோய் பி வியர்த் கே விகாரி சன்ஸ்கார் உத்பன்ன நஹி ஹுயே. லேக்கின் ஜப் ஆதா கல்ப் கி பிராலப்த பூரி ஹோதி ஹை மத்ய கால் மே ஹம் ஆதே ஹை துவாபர் மே ஆதே ஹை தோ ஆத்ம அபிமானி ஸ்டேஜ் பதல் கர்கே தேஹ அபிமானி பன் ஜாதி ஹம் அப்னே ஆப் கோ ஹி பூல் ஜாதே ஔர் தேஹ அபிமான் கே காரண் அநேக பிரகார் கே விகார் உத்பன் ஹோதே உன் விகாரோ கே அதீன் ஹோதே ஹோதே ஜப் வோ கர்ம இந்திரியோ கி ஆத்மா குலாம் பன்தி ஹை அதீன் ஹோகர் கே கர்ம கர்த்தி ஹை ஜோ கர்ம பார் பார் கியா ஜாதா ஹை வோ சன்ஸ்கார் பன் ஜாதா ஹை. கேத்தே ஹை க்யா கரூ மேரி ஆதத் ஐசி ஹை மேரே சன்ஸ்கார் ஐசே ஹை சன்ஸ்கார் அப்னே ஆப் அப்னா காரிய கரா தேதே ஹை. இஸ்லியே ஆதா கல்ப் சே பிச்சலே 63 ஜன்மோ சே ஹம் ஆத்மாவோ நே தேஹ அபிமான் மே ஆகர் கே ஜோ இன் கர்ம இந்திரியோ சே கர்ம கியே ஹை உன் கர்மோ கே பரிணாம் ஸ்வரூப் ஹமாரே சன்ஸ்கார் கடே பன்தே கயே ஹை. சங்கம் யுக் பர் ஜப் பாபா ஆத்மா கோ பாவன் பனானே கே லியே ஆதே ஹை சன்ஸ்காரோ கே சுத்திகரண் கே லியே கை பிரகார் கி விதியா பதாதே ஹை. அகர் கோய் பிராமண் பாபா கே பச்சே ரோஜ் முரளி சுனதே ஹை தோ பாபா கி முரளியோ மே ஐசி அநேக யுக்தியா விதியா பதாயி கயி ஹை ஜின்சே சன்ஸ்கார் परिवर्तन होते हैं, संस्कारों में शुद्धता आती जाती है। लेकिन कई बार देखा गया है संस्कार इतने प्रबल हैं, इतने कड़े हैं, अगर कोई ने कड़ी नजर नहीं रखी है, केवल वो ब्रह्मा कुमार बन गया, सफेद ड्रेस पहन ली, शुद्ध भोजन करने लगा, मुरली सुनने लगा, योग करने लगा, तो अच्छे संग के कारण, अच्छे खान पान के कारण, अच्छे वातावरण में रहने के कारण वो संस्कार अंदर अंदर दबे हुए रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, उनमें इतनी शुद्धता नहीं रहती। लेकिन अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा संग मिल रहा है, रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो संस्कार अंदर अंदर दबे रहते और अच्छी बातों की परत उसके ऊपर चढ़ती जाती। लेकिन कभी अगर ऐसा माहौल बनता है, कभी ऐसा वायुमंडल बनता है जहां पर बिल्कुल ही संग खराब है, वातावरण ठीक नहीं है और विकारी लोगों के साथ लेन देन है, तो जो छिपा हुआ संस्कार है, जिसको हमने योग अग्नि में जलाया नहीं है, परिवर्तन नहीं किया है, वो संस्कार बाहर आ जाता है। आप देखेंगे कि अचानक चलते चलते कई ब्राह्मण आत्माओं से श्रीमत की कई अवज्ञाएं हो जाती हैं, जो बाबा की आज्ञाएं हैं उनका उल्लंघन हो जाता, और अगर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तो उसका यही एक जवाब रहता है कि अचानक हो गया, मैंने सोचा नहीं था, वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था, बातें ही ऐसी थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मेरा मूड खराब हो गया, मेरे से कुवचन निकल गए, मैं अपने आवेग को, अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मेरे से ऐसा हो गया। क्योंकि वो संस्कार जो बना हुआ है देह विमान वाला, बाबा के बच्चे बनने के बाद महसूस होता है ये ठीक नहीं है, ब्राह्मण जीवन के लिए ठीक नहीं है, ये योगी जीवन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उस पर हमने कड़ी नजर नहीं रखी, उसको खत्म करने के लिए एकांतवास नहीं किया, तपस्या नहीं की, योग को शक्तिशाली नहीं बनाया, और समझने लगे कि वो संस्कार तो अभी खत्म हो गया। लेकिन देखा जाता है विशेष करके वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, जबकि विकारों का फुल फोर्स कहीं न कहीं से वार कर रहा है, प्रकृति अपना तमोगुणी रूप दिखा रही है, पुराने दबे हुए कई प्रकार के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, ऐसे समय पर पास्ट में जो कर्म हुए हैं, जो कड़े संस्कार बन गए हैं, वो अपना रूप दिखाते और अचानक हमारी शुद्ध पवित्र ब्राह्मण जीवन पर दाग लगा देते हैं। बहुत अटेंशन देना बाबा की इस बात पर, अंडरलाइन करना, बच्चे ब्राह्मण जीवन में पुराने संस्कारों का संस्कार कर दो। जब व्यक्ति का शरीर छोड़ने के बाद संस्कार किया जाता है, और विशेष करके हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में अग्नि संस्कार किया जाता है, तो संस्कार करने के बाद जिस शरीर का संस्कार हो गया, उसके बाद अगर वो सामने आता है तो लोग डर जाते हैं कि कहां से आ गया ये, इसका तो हमने दाह संस्कार कर दिया था, वो भूत बन के आ गया। ऐसे ही कई बाबा के बच्चों ने संस्कारों को दबाया है, अभ्यास किया है, लेकिन कभी कभी वो संस्कार भूत की तरह सामने आते और आत्मा को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कई श्रीमत की अवज्ञाएं करा देते हैं। इसलिए हम सब अपने ऐसे संस्कारों पर विशेष अटेंशन दें, क्योंकि आप सभी को बाबा के घर में, मधुबन घर में आने का चांस मिला है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में आप समय निकाल करके आए हैं। मेरी यही भावना है कि आप सब एकांत में कुछ समय अपने आप को देखें, क्योंकि संस्कारों को परखने के लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत है। कौन सा संस्कार कहाँ छिपा हुआ है, जो कभी संकल्पों में, कभी सपनों में, कभी बोल में, कभी कर्म में प्रकट हो जाता है। अगर आप कड़ी नजर रखेंगे और महसूस करके उसको समाप्त करने का संकल्प करेंगे, तो बाबा कहता है, बच्चे आपकी हिम्मत का एक संकल्प और पदम गुना मदद इस समय मेरी है। हम सबको एक अनुभव होता है कि अगर कोई सच्चे दिल से ये महसूस करे कि मेरा ये संस्कार जो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे परिवार में एक दूसरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरा योग लगने नहीं देती, मुझे इस ब्राह्मण जीवन की आंतरिक खुशी का अनुभव होने नहीं देती, जिस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उसमें मेरा ही ये निजी संस्कार विघ्न रूप है, महसूस कीजिए। और महसूस करने के बाद ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें, जैसे आजकल विशेष बिना चीर फाड़ के, बिना कटपिट किए हुए डॉक्टर्स साइंस के साधनों से लेजर किरणों से ऑपरेशन कर देते हैं और कम से कम चीरा लगे ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अगर हम सभी बाबा की वो पवित्र किरणें, वो लेजर किरणें मन और बुद्धि को एकाग्र करके अपने आप पर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट भी ऐसी सच्ची मन की एकाग्रता से, बुद्धि की एकाग्रता से बाबा को हम याद करते हैं और संकल्प करते हैं कि ये संस्कार मेरा समाप्त हो जाए, मुझे अपने आप को बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र योगी जीवन में जीना है। ऐसे शुद्ध पवित्र संकल्प को लेकर के एक शुभ इच्छा के साथ हम बाबा को बहुत प्यार से याद करें। प्यार की याद ही अग्नि कहलाती है, इसको कहते हैं योग अग्नि, लगन की आग है। वो कोई आग नहीं है जो जला देगी, भस्म कर देगी। आजकल सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए सुनार बहुत तेज अग्नि में सोने को डाल देता है, सोना उसमें गलता नहीं है, लेकिन वो सोना गलने के बाद उसकी जो खाद है, जो अलाय मिक्स है, वो निकल जाती और प्योर सोना अलग हो जाता है। आत्मा अनादि अविनाशी है, उसमें संस्कार भिन्न भिन्न पूरे 84 जन्मों के भरे हुए हैं। जब हम बाबा की याद में एकाग्र होते हैं, योग प्यार की लगन की अग्नि रूप लेता है, तो ये कड़े संस्कार परिवर्तन होते हैं। आप देखेंगे कई बाबा के बच्चे हैं 5, 10, 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, कईयों की व्यवहारिक जीवन में सरलता, नम्रता, दिव्यता, मधुरता, ये सब दिव्य गुण दिखाई देते हैं। पहले की जीवन और वर्तमान जीवन में बहुत बड़ा अंतर अनुभव होता है, लेकिन कई हैं जो ज्ञान योग में चलते हैं, सेवाएं करते हैं, तन मन धन लगाते हैं, लेकिन संस्कार चेंज नहीं होते। 20 साल 25 साल से ज्ञान में हैं, ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन ज्ञान उनमें नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं गुस्से में बोलेंगे, कट्टु वचन बोलेंगे और ऐसे ऐसे शब्द बोल देंगे जो सामने वाली आत्मा दिल टूट जाए, घायल कर दे। हैं ज्ञानी योगी 40 साल 50 साल से समर्पित या सेंटर पर आने वाले, क्लास करने वाले, लेकिन अपने संस्कारों का दिव्यीकरण, शुद्धिकरण नहीं कर पाए। बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनाते हैं, मुरली सुनते हैं, अच्छी क्लासेज कराते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक किसी ने एकांत की तपस्या नहीं की, जब तक गहरी महसूसता नहीं की, तब तक वो संस्कार जाता नहीं है। बहुत रमणीक बात है, हमारे भ्राता जी कभी कभी क्लास में कहते थे, एक संस्कार तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, जब देखो तब वही। इतना भी अच्छे बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, लेकिन चिड़चिड़ेपन का संस्कार, कुवचन का संस्कार, टकराव का संस्कार, छोटी छोटी बातों को फील करने कर लेना, मूड बदल लेना, दुख दे देना, दुखी हो जाना, ऐसे संस्कार हैं। कभी रो देना, कभी हंसा देना, कभी रुला देना, बहुत वैरायटी है संस्कारों की, तो कितनी आपके आगे हम व्याख्या करें। सब जानते हैं ये सब देह मान के संस्कार, और विशेष करके एक संस्कार जो है दैहिक दृष्टि का, जिस पर बाबा की बहुत कड़ी शिक्षाएं मिलती हैं कि बच्चे देहभान में आकर के किसी को दैहिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो विकारी दृष्टि आपको, आपकी पवित्रता को नष्ट कर देगी। ये देहभान का संस्कार जो है, देह को देखने का संस्कार, देह पर अटेंशन जाए, ध्यान जाए, वो संस्कार बहुत मेहनत के बाद समाप्त होता है। उसके लिए कड़ी नजर चाहिए, और उसका एक अच्छा अभ्यास यही है कि बार बार इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूं, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य मणि हूं, मैं मरजीवा ब्राह्मण हूं। उस लौकिक जीवन से मर गया, ऐसे नहीं मेरा जन्म ही विकारों से हुआ है, मेरे अंदर तो संस्कार बड़े पड़े हुए हैं, भले जन्म लौकिक जन्म कैसे भी हुआ है, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को ये द्विज जन्म दिया है, ये मरजीवा जन्म दिया है, यह लौकिक जन्म है, हम कुख वंशावली नहीं है। ब्राह्मण आत्माएं इस मरजीवा जन्म में मुख वंशावली हैं, और मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ब्रह्मा बाबा के समान हैं। ब्रह्मा बाबा के संस्कार कैसे थे, बाबा ने वर्णन किया है अव्यक्त रूप में। ब्रह्मा बाबा के संस्कार बहुत साक्षी और उपराम थे, बहुत कल्याण की वृत्ति वाले संस्कार थे, हर बच्चे का कल्याण हो, हर बच्चे की उन्नति हो, उस संस्कारों को हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा के संस्कार अपने संस्कार बन जाएं, जैसे बाबा ने इतने बच्चों के बीच में रहते अपनी ऊंची स्थिति बनाई, सबकी पालना की, पालना करते हुए भी तीन स्थिति के आधार से वो संपन्न संपूर्ण बन गए। देवान को गलाने के लिए, देवान को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने अपनी निराकारी स्टेज पर बहुत अटेंशन दिया। मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, ये वस्त्र है, ये वस्त्र टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लूज वस्त्र पहनता है तो जब चाहे उतार दे, जब चाहे पहन ले, और अगर कोई टाइट वस्त्र पहनना है तो उतारने में बड़ी मेहनत लगती है। वर्तमान समय ये शरीर रूपी वस्त्र इतना टाइट हो गया है, बैठते योग में एक मिनट दो मिनट भी मुश्किल से मैं आत्मा अलग हूं उसका अनुभव करते हैं, फिर वही संस्कार देह विमान वाला ड्रेस को टाइट कर देता है। इसलिए हम सब जितना समय मिलता है, जब समय मिलता है, कर्म करें, चलें, फिरें, बात करें, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास के आधार से इस शरीर भान को भूलना है, इसको गलाना है। और यही एक निराकारी स्थिति का अभ्यास हमारे संस्कारों में नवीनता लाता है, परिवर्तन लाता है। ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते करते संपूर्ण निर्विकारी स्टेज क्या होती है, जिसमें जरा भी मैं और मेरापन न रहे, जरा भी किसी भी चीज की, न वस्तुओं की, न देह की, किसी भी प्रकार की आसक्ति न रहे, ऐसी स्टेज निर्विकारी स्टेज बनाई। और निर्विकारी स्टेज बना करके कहीं ये संकल्प ना आ जाए कि मैं निर्विकारी बन गया हूं, अहंकार ना आ जाए, इसलिए निरहंकारी बन गए। इसलिए आज की दुनिया के अंदर कोई पवित्र रहते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, उनको ये अहंकार रहता है कि मैंने किया है, लोगों को पता चलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, कहीं तो लोगों को कुछ जानकारी हो कि मैंने क्या क्या किया है। और सूक्ष्म में होता है अहम भाव, ये बहुत कड़ा संस्कार है जो लोग अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। बाबा ने ऐसा बनाया है, बाबा ने योग्यताएं दी हैं, उसकी देन मैं प्रयोग में ला रहा हूं, इतनी नम्रता आ जाए, इतनी निरहंकारिता आ जाए, कभी भी जोश नहीं आएगा, कभी किसी के प्रति भी ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो उसकी दिल टूट जाए, जो उसको ठेस पहुंच जाए। आत्मा बहुत, मैं तो हमेशा 5-6 बातें कहता हूं, हमारी दृष्टि शीतल हो जाए, स्वभाव सरल हो जाए, वाणी मधुर हो जाए, संस्कार मिलन वाले मिलनसार हो जाए, हर कर्म सुख दे और सुख ले। हम सब बाबा के बच्चे इस संगम पर श्रेष्ठ संस्कारों के परिणाम स्वरूप हर आत्मा को सुख दे सुख ले, न दुख दे न दुख ले। बहुत बोझ चढ़ता है अगर कोई बाबा का बच्चा भूल चूक से भी अचानक भी किसी को दुखी कर देता है, तो दुख की जो आह है वो बहुत खतरनाक है। ध्यान देना आप, कोई भी आत्मा किसी भी कारण से, भले उसकी गलती भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे व्यवहार से अगर वो दुखी है, परेशान है, उसके संकल्प चल रहे हैं, उसकी नींद फिट रही है, उसको अलग से अनेक विचार आ रहे हैं, हमने किसी भी कारण से उसके प्रति कुछ भी सुना बोला, कोई ने मुझे उसके बारे में कह दिया, अंदर चला गया और मेरे मुख से उसके प्रति अपशब्द निकल गए, उसकी स्थिति को मैंने बिगाड़ दिया, ये बहुत बड़ी हिंसा है। कल के वरदान में बाबा ने इस पर अंडरलाइन कराया है कि बच्चे ऐसी हिंसा मत करो, इससे बद्दुआएं मिलती हैं। आत्मा कभी भी अपनी प्रगति नहीं कर सकती, कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में उस सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, परमानंद का अनुभव नहीं कर सकती। कई बार बाबा के कड़े शब्द मुरली में मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, टाइप करता हूं, पढ़ने वाले सुनाने वाले क्या इस पर विचार करते हैं कि अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहता मैं श्राप नहीं देता, मैं श्राप नहीं देता बच्चों को, लेकिन कर्मों की गहन गति जरूर सुनाता हूं। सुनाया है बाबा ने, लेकिन फिर भी दुख दे रहे हैं, वो दुख देने का संस्कार नहीं जाता। नई दुनिया बनाने वाले, एक मत, एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करने वाले, अगर संगम के इस समय पर अपने संस्कारों को इतना दिव्य, इतना शुद्ध, इतना लौकिक नहीं बना पाए, अभी नहीं तो कभी नहीं, कब बनाएंगे। इसलिए संगम का ये बहुत गोल्डन सुंदर अवसर है, अपने संस्कारों को महसूस करें, एकांत की तपस्या करें। बाबा कहते हैं कभी कभी अपने आप से हट करो। जैसे लौकिक में कोई चीज की सिद्धि के लिए, कोई चीज को प्राप्त करने के लिए विशेष हमारी माताएं एक व्रत रखती हैं, अपने पति की आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी करवा चौथ आती है, व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, निर्जल रखती हैं, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, कामनाएं रखती हैं, शुद्ध भावनाएं रखती हैं। क्या हम सब भी अपने संस्कारों को समाप्त करने के लिए, इन विकारों को समाप्त करने के लिए ऐसा व्रत लेते हैं? कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी देहधारी को दैहिक दृष्टि से देखूंगा नहीं, उसके प्रति ऐसी भावनाएं नहीं रखूंगा, अपने विचारों को शुद्ध बनाऊंगा। बाबा कहता भोजन की परहेज रखते हो तो चलो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन कम से कम ये व्रत ले लो, आपकी मनसा बहुत पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, जो सोचोगे होने लगेगा। अभी हम लोगों को ऐसा कई बार अनुभव होता है, संकल्प उठता है और काम हो रहा है। दादियों को कैसा अनुभव होता होगा, इतने बड़े यज्ञ को उन्होंने चलाया, अभी भी वो अव्यक्त होते हुए भी यज्ञ को इतना निर्विघ्न चला रही हैं, उनके संकल्प की यह सिद्धि है। जरूर उन्होंने अपने संस्कारों को इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना पवित्र बनाया, जो आज संकल्प से सारी कारोबार चल रही है। हम सब बाबा के बच्चे नई दुनिया बनाने के निमित्त हैं। हम नए स्वर्णिम युग का आह्वान कर रहे हैं। कलयुग जाएगा, ये दुख धाम जाएगा, हमारी स्वर्णिम दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा। केवल हम मुख के लड्डू तो नहीं खा रहे हैं, सब विचार करना। अगर स्व को परिवर्तन नहीं कर पाया तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा। हमारी यही तपस्या है कि हम ऐसा व्रत लें, ऐसा उपवास करें जो हमारे संस्कार खत्म हो जाए, पुराने संस्कार समाप्त हो जाएं। काम विकार के संस्कार हैं, लोभ के संस्कार हैं, क्रोध के संस्कार हैं, मोह ममता तो इतना छिपा हुआ है जो बात मत पूछो, अटैचमेंट है। संग्रह वृत्ति कितनी है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा रूप दे देना, कई प्रकार के कड़े संस्कार आत्मा के हैं, लेकिन वो महसूस नहीं होते कि ये ब्राह्मण जीवन में रुकावट है, यही विघ्न है, यही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत अच्छी तरह से एकांत में जाकर के इस व्रत को रिवाइज करो। और बाबा दो बातें ध्यान पर खिंचवाते हैं, अंडरलाइन करना, जो मुझ आत्मा के अनादि और आदि संस्कार है। अनादि संस्कार क्या है, परमधाम घर की स्मृति करके मैं जब आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, परमधाम घर में हूँ, जब इस सृष्टि मंच पर मेरा पार्ट नहीं है, मैं अपने ओरिजिनल निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ, तो परमधाम में मैं बाबा के समान संपूर्ण निर्विकारी स्टेज पर हूँ। वो पवित्र धाम है, कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प का रूप नहीं लेते, आत्मा एकदम निर्संकल्प समाधि में है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। हमारे अनादि संस्कार, और फिर जब हम इस सृष्टि मंच पर आए, सत्ययुग के अंदर दिव्य देवता रूप में अवतरित हुए, जन्म लिया, वो भी एक योग बल की रचना, प्रकृति सतो प्रधान, आत्मा संपूर्ण पावन, कहीं पर भी कोई आकर्षण नहीं, इतने सब प्रकार के वैभव हैं, संपत्ति है, सब प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, लेकिन देवताएं कहीं पर भी फंसे हुए नहीं हैं, सदा देवतापन की भावना है। वो पवित्र दिव्य संस्कारों से सृष्टि चलती, और हम कहते हैं वही दुनिया फिर से आने वाली है। वो संस्कार जो हमारे अनादि और आदि संस्कार हैं, संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा को बार बार ये संस्कार जो बार बार इमर्ज होते हैं उनको मर्ज करो, उनकी विस्मृति हो जाए, ये स्विच ऑफ हो जाए और वो स्विच ऑन हो जाए। है तो स्विच की बात, अभी स्विच ऑफ कर दो अंधेरा हो जाएगा, अभी स्विच ऑन कर दो रोशनी हो जाएगी। कहीं जाते कहीं नहीं है, लेकिन स्मृति और विस्मृति मर्ज और इमर्ज का ही चक्कर है, खेल है। तो जो इस समय के संस्कार अभी तक चलते आए हैं देह अभिमान के कारण, उन संस्कारों की विस्मृति हो जाए। मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं परम धाम घर से इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुई हूं, मुझे फिर से अपने संस्कारों को शुद्ध संपूर्ण पावन बना करके वापस जाना है। इन संस्कारों को हम इमर्ज कर लें। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे अपने 5000 वर्ष पहले के दिव्य संस्कारों का आवाहन करो। मैं वही पूज्य आत्मा, वही महान आत्मा फिर से वैसा बनने वाले हूं, वो संस्कार मेरी चलन और मेरे व्यवहार में दिखाई देने लगे। हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के दो लक्ष्य रखते हैं कि बाबा के हम बच्चे बने, ज्ञान और योग की पढ़ाई और पालना ले रहे हैं, हम इस बाबा की पालना का रिटर्न करें कि हमारी जीवन बड़ी शुद्ध और पवित्र बन जाए। जितनी मुरलियां चली हैं, जितनी चल रही हैं, उनके पीछे एक ही भाव है, सारी मुरलियों का एक ही सेंस है कि आत्मा को पावन बन करके मेरे साथ घर चलना है, और ले जाऊंगा वायदा है, बाबा सब बच्चों को पावन बना करके अपने साथ ले जाएगा। अगर कोई प्यार से योग से बनेगा तो उसको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, बीच में कोई कस्टम वाले रोकेंगे नहीं, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी तो ही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चे हो, आज जज का बच्चा अगर कोई गलती करके भूल करके कोई सजा खा रहा हो और जज ही उसको सजा दे रहा हो तो उसका भी सिर नीचे हो जाएगा। हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब जानते हैं कि बाबा ने इतना सुंदर चांस दिया है, अभी भी अवसर मिला। 2 साल 3 साल से जब से कोविड शुरू हुआ है सबको इतना गोल्डन चांस मिला। चलो अभी आप कहते थे मेरे पास समय नहीं है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं नौकरी में बिजी हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ, कोई बात नहीं, सब बंद करो, बैठो एकांत में। बैठे सभी, किया तपस्या, कईयों ने तो समाचारों में ही समय गंवा दिया, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अंदर रहे घर में रहे और आपस में संस्कारों के टक्कर में आ गए। और कई बाबा के बच्चों ने बहुत अलर्ट होकर के एकांतवास का लाभ लिया, अच्छी स्टडी की, अच्छी तरह से बाबा की मुरलियों की गहराई को समझा, अच्छी अच्छी क्लासेस सुनी, अच्छा योग किया, और कईयों ने अपने समय को ऐसे गंवा दिया। ऐसे गोल्डन चांस जब हमें एकांत के लिए, अंतर्मुक्ता के लिए, सब बातों बाह्य वातावरण से अलग करके बिठाते हैं तो उसका पूरा लाभ अगर किसी ने लिया तो देखना कि इस लाभ से, इस तपस्या से, इस एकांतवास से मेरे संस्कारों में कितनी दिव्यता आई है, कितनी शुद्धता आई है, कितनी पवित्रता आई है, या एकांत में जाने से और इन विकारों ने अपना रूप दिखाया है। कई बार एकांत बहुत नुकसान भी करती है। जो छिपे हुए संस्कार हैं वो एकांत में जाने से ही बाहर आ जाते हैं, और कई बार योगी आत्माओं के लिए, तपस्या के लिए एकांत एक वरदान बन जाता है। वो अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छे अच्छे विचार सागर मंथन करके लेख तैयार करते हैं और एकदम एकाग्र होकर के बाबा को याद करते हैं। मुझे तो ऐसा चांस मिला, मुझे तो ऐसे लगा कि बाबा ने इस 2-3 साल के अंदर, 2 साल ही हुआ, 20 और 21 कहें, इतनी सेवाएं कराई, एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की सेवाएं करा दी। मनसा से भी कराई तो वाचा से भी कराई, रोज कहीं ना कहीं क्लास हुए, रोज कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से मिलना हुआ। इतना संकल्प शुद्ध हुए, पवित्र हुए, संस्कार निर्मल हो गए, ऐसा लगता था जैसे बाबा अभी उड़ा रहा है। अभी ऐसे समय अनुसार आप सब समय की सूचना तो देख रहे हो, एक जाता है, एक कोई बीमारी जाती है, एक कोई बात पर जीत होती है, तो दूसरे रूप में प्रकृति अपना खेल खेलती है। परिवर्तन तो होना ही है, सृष्टि के परिवर्तन के पहले क्यों ना हम अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करें, अपने संस्कारों का परिवर्तन करें, संस्कारों का दिव्यीकरण हो, शुद्धिकरण हो। जरा भी कहीं कोई ऐसी संस्कारों में मैंपन की, मेरेपन की, अहम की, बहम की, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की कोई भी ऐसी भावनाएं हों, बाबा कहता है बच्चे लो बाबा की शक्ति सकाश, और पहले खुद को बदलो। संसार को बदलने के लिए हम योग कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रकृति बदल जाए, संस्कार बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन खुद को बदलने के लिए समय नहीं दे पाते। अब समय कहता है, बाबा का इशारा है कि बच्चे जो समय मिला है, एक एक संकल्प, एक एक श्वास, संगम युग का ये समय, और आपके पास जो संपत्ति है, जो कोई भी विशेषता है, उसे सफल करो। कहीं पर भी संकल्प, समय, श्वास, संपत्ति अब व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये फास्ट ले लो, ये व्रत ले लो, कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी बड़ी बातें हो जाएं, अगर मेरा वहां पर कोई फर्ज नहीं है तो मैं अपने संकल्प नहीं चलाऊंगा। संकल्प उत्पन्न होते ही क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां की क्वेश्चन मार्क अनेक प्रकार से उलझन में डाल देते हैं। इसलिए अगर मेरा कोई भी कार्य नहीं है, हम इतने बड़े घर में रहते हैं, पुराने होते हैं तो कई प्रकार की जवाबदारियां भी होती हैं, लेकिन अगर मेरा कार्य नहीं है, मेरे कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे कोई कहता भी है तो मैं कहता हूं प्लीज स्टॉप, प्लीज मुझे नहीं सोचना उसके। जिसको बाबा ने निमित्त बनाया है वो जवाबदार है, मैं नहीं। हमारी शुभ भावनाएं हैं, बाबा का यज्ञ आगे बढ़े, सब बच्चे बाबा के निर्विघ्न रहे, बाकी अगर कोई कुछ करेगा तो ऊपर वाला भी छोड़ेगा नहीं, बैठा है देख रहा है। इसलिए कभी भी कोई भी बात अगर दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, कोई सुना करके भी जाए तो क्या करेंगे। मान लो अगर कोई का दिमाग ऐसा है और कुछ आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपकी ग्लानी कर रहा है, क्या करेंगे, सोचेंगे इसका दिमाग ही ऐसा, छोड़ो इसको, अंदर नहीं लेंगे। अगर कोई भी किसी भी विकार के अधीन होकर के अगर कुछ कर रहा है तो आत्मा परवश है। अब परवश आत्मा अगर बोल रही है तो मैं भी उसके सामने परवश हो जाऊं क्या। इसलिए उस बात को अंदर ग्रहण नहीं करना, जो काम की बात मेरे नहीं है उस पर फ्लिश टॉप लगाओ, उसका चिंतन करके अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करो। नहीं तो माइंड को डिस्टर्ब करना ये बहुत बड़ी सजा है। हम सब बाबा के बच्चे जैसे इस समय वर्तमान समय तन को स्वस्थ रखने के लिए बड़ा टेंशन देते हैं, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, कई प्रकार की दवाइयां अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन तन तो ठीक है लेकिन मन डिस्टर्ब हो गया तो, माइंड डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा। इसलिए सब बाबा के बच्चों को एक संकल्प लेना चाहिए, कुछ भी हो कैसा भी दृश्य आ जाए, बाबा कई बार कहते हैं पहाड़ जैसी समस्या आ जाए, हिमालय जैसा पर्वत पहाड़ बन करके समस्याओं का हमारे सामने आ जाए, बच्चे तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे संकल्प डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इस ड्रामा के अंदर जो सीन आई है उसमें बहुत बड़े रहस्य हैं, बहुत अच्छा कल्याण समाया हुआ है। इस निश्चय को, इस ड्रामा के पाठ को अच्छी तरह से पक्का करके संगम पर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करो, निश्चिंत स्थिति का अनुभव करो। अगर हम कहते हैं हमारा संपूर्ण निश्चय है अपने में, बाबा में, ड्रामा में, तो उसकी निशानी है निश्चिंत स्थिति। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां कर वो रहा है और टाइम वेस्ट हम कर रहे हैं। हमारे संस्कारों में है मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मुझे पता है ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, और अनेक प्रश्नों में उलझ करके कभी कभी उन संस्कारों का प्रभाव वाणी में आ जाता है, संबंधों में आ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दो बातों का बैलेंस रखना सीखो, बाबा के बच्चे हैं, बालक हैं, और साथ साथ स्वयं के और बाबा के शक्तियों के मालिक हैं। मालिक बन करके बाबा के डायरेक्शन अनुसार राय देना अपना फर्ज बनता, लेकिन अगर कोई बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो बाबा कहता है जैसे बच्चा बालक भूल जाता है उस बात को, ये नहीं कहता क्यों नहीं सुना गया, क्यों नहीं माना गया, उस पर डिबेट नहीं करता है। अगर हम सभी अपने संस्कारों को दिव्य, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र बनाना चाहते हैं तो इस बैलेंस को सीख जाएं, बाबा के मालिक हैं, उनकी सब शक्तियों के मालिक हैं, बालक सो मालिक हैं, जो उनके पास है वो सब शक्तियां मुझे वरदान में बाबा ने दी हैं, सहन करना है, समाना है। संस्कारों को कहीं मिटाना पड़ता है, कहीं भुलाना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, तब संस्कार शुद्ध बनते हैं, पवित्र होते हैं। नहीं तो ये संस्कार बार बार उछलते हैं, संकल्पों में आते हैं, बोल में आते हैं, और फिर अगर कर्म में आ जाते तो कर्म करने से एक बार, दो बार, तीन बार फिर से वो कड़ा संस्कार बन जाते हैं। बहुत वंडरफुल सर्किल है, संस्कारों के आधार से ही अगला जन्म होता है, संस्कारों के अनुसार ही हमारी सकल सूरत का निर्माण होता है। इसलिए सब ध्यान देना, अगर वो देवता ही सकल सूरत चाहिए, दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा आए, तो उसके लिए संस्कार बहुत शुद्ध और पवित्र निर्मल होने चाहिए। करो तपस्या, बैठो एकांत में, छोड़ो सब बातों को, सेवा बाबा अपने आप करा लेगा। क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, बाबा की सेवाएं हैं, विश्व कल्याण का कार्य है। हम सब अपनी स्थिति बनाएं, अपने संस्कार की इतनी शुद्धिकरण करें जो शुद्धि के संस्कारों के आधार से हमारे संकल्प बहुत पवित्र और शुभ हो जाएं, जिसका एक बहुत सुंदर आभा मंडल बनता है, और उस आभा मंडल के आधार से सेवाएं होती हैं। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन कोई वाणी के द्वारा नहीं किया जाएगा, वाणी द्वारा क्लास करा करके, प्रदर्शनी लगा करके, अभियान निकाल करके ये कार्य नहीं संपन्न कर पाएंगे। इसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपने बहुत शुद्ध पवित्र संस्कार और संकल्प की शुद्धता और एकाग्रता के आधार से शक्तिशाली बन करके मनसा से सकाश देनी है। बैठ जाओ एक तरफ, जैसे कोई बहुत पावरफुल बल्ब कहीं जग रहा होता है, वो बल्ब कहीं नहीं जाता, लेकिन उस पावरफुल बल्ब की किरणें, उसकी लाइट बहुत दूर दूर तक जाती है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मनसा सेवा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी शुद्ध पवित्र शक्तिशाली स्थिति में बैठो, कोई पुराना पिछला संस्कार इमर्ज न हो। मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ और उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की किरणों के नीचे हूँ। वो किरणें इस कांच पर आई और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के वायुमंडल में गई। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते, बहुत दूर दूर के शिप को, स्टीमर्स को रास्ता दिखा देता है। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, लाइट हाउस स्थिति में स्थित होकर के बाबा की शक्तियां, वो माइट पूरे विश्व को देनी है। अब इस सेवा के लिए समय चाहिए। इस सेवा के लिए हर बाबा के बच्चे को व्यर्थ से मुक्त होना होगा। जहां पर व्यर्थ है वहां ये सेवा नहीं हो सकती। जहां पर व्यक्त और व्यर्थ बातें चल रही हैं, वहां पर अव्यक्त स्थिति नहीं बनेगी, और अव्यक्त नहीं बनेंगे तो विश्व कल्याण की सेवा जो ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं उनके हम साथी नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा के साथ अभी हम सबको मददगार बनकर के इन सेवाओं को संपन्न करना है। फास्ट गति की मनसा द्वारा हम सेवा करके प्रकृति का परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारे घराने की आत्माएं हैं वो फिर से इस परिवार में आएंगी, और जिन्हों को मुक्ति का वरदान चाहिए उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा, जिन्हें जीवन मुक्ति चाहिए उन्हें जीवन में मुक्ति मिलेगी। अब ये सेवा रही है। बाबा कहता बच्चे आप तैयार हो जाओ, मैं गेट खोलूं और सब आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं, सब घर चले, और फिर जब नई दुनिया शुरू होगी तो नए संस्कार वाली आत्माएं सतयुग त्रेता में आएंगी, और फिर जो संस्कार लेकर के गई हैं जिस प्रकार के, वो अपने समय अनुसार आएंगी। तो हम सब बाबा के बच्चे जीवन मुक्त स्थिति को इसी संगम पर अनुभव करें, सब बातों से मुक्त, कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बोझ नहीं। अगर बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, कोई भी कर्मों का, संस्कारों का, किसी भी प्रकार के हिसाब किताब का अगर बोझ नहीं है, तो आत्मा बहुत अच्छी सेवा कर सकती है, उड़ती कला का अनुभव कर सकती है, बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी बन सकती है। तो हम सब विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। अपने संस्कारों पर जरूर नजर रखना। कोई भी ऐसा संस्कार जो हमारे इस मार्ग में, योग में रुकावट डाल रहा है, उसके लिए प्रतिज्ञा करो, व्रत लो, एक से सुनना है और कोई को नहीं देखना और सुनना है। बाबा के सिवा और कोई कुछ भी कहे मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। एक व्रत्ता बन जाएंगे तो एक बाबा के प्यार में उसकी शक्तियों के आधार से सभी पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा, और ये संस्कार दिव्य अलौकिक बनेंगे। आत्मा पावन बनकर के घर चलेगी और फिर नई सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करके पाठ बजाएगी। तो वर्तमान समय के अनुसार ये चांस मिला है अच्छी तपस्या करने का। अब एक घंटा तपस्या करेंगे, कई लोगों को तो घूमने फिरने का शौक होता है, बगीचों में बैठते हैं, लेकिन ऐसे समय पर विशेष करके दो समय ऐसे बाबा ने निश्चित किए हैं, एक अमृत वेले का समय है और एक ये नमाज शाम का, संध्या कालीन समय है। ऐसी तपस्या करो जो ये सकाश, ये वाइब्रेशन दूर दूर तक लोगों को लाइट दे, शक्ति दे, परिवर्तन करे। तो चलो अभी हम सब 3 मिनट के लिए इस देहभान से अलग हो जाए, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं लाइट और माइट से भरपूर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें ज्ञान सूर्य के द्वारा मुझ आत्मा को संपन्न कर रही हैं, और वही किरणें पूरे वायुमंडल में फैल रही हैं।